थे स्वर में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी है, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
तुमको आने दो मेरे पास, उनको आने दो मेरे पास, उनको आने दो मेरे पास, उनको आने दो मेरे पास। न रोको उन्हें न टोको उन्हें, उनको आने दो मेरे पास। न रोको उन्हें न टोको उन्हें, उनको आने दो मेरे पास, 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 उनको आने दो मेरे पास।
कोड़ियों को तुम गले से लगाओ, निर्बल का बन जाओ बल। अंधों की तुम रोशनी बनो, अपाहिजों को दो तुम जगा। बीमारों की तुम सेवा करो, दुखियारों को दो हौसला। बेजुबानों की बन जाओ तुम जुबान, गरीबों की गरीबी मिटाओ। उनको आने दो मेरे पास, उनको आने दो मेरे पास।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय मित्र और परिवार के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से जकरिया नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे और जकरिया की पुस्तक उसके 11 अध्याय और उसके 11 पद से अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम अलग अलग स्थानों पर बैठकर रेडियो के माध्यम से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन को सुन सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय अलग अलग स्थानों पर रेडियो के निकट बैठे हैं, हमारी विनती है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें ताकि आज जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में अधिकाई से कार्य करने पाए, उनके हृदय से बोलने और बातचीत करने पाए ताकि वे संसार की बुराइयों को छोड़कर आपके सत्यता को पहचान कर आपकी निकटता में आ सकें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार अवस्था में हैं और वे चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। हाँ पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन के हर एक तकलीफों को जानते हैं, उनकी वेदनाओं और पीड़ाओं को जानते हैं। विनती है कि आप उन्हें स्पर्श करें, उनके जीवन के पापों को आप क्षमा करें और उन्हें शांति दें, उन्हें चंगाई और छुटकारा दें। आज के वचन के द्वारा आप उन्हें भी आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम सब जकरिया नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। जकरिया अब आने वाले विश्व शासक के बारे में अर्थात विषय भविष्यवाणी करता है कि लबानोन से होकर वह आएगा और इसराइल की यह समृद्धि समाप्त हो जाएगी। उसने अपनी एक लाठी का नाम अनुग्रह रखा था जिसे उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए अर्थात तोड़ दिए। इसका अर्थ था कि परमेश्वर इसराइल पर अनुग्रह नहीं करेगा क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। परमेश्वर उन्हें बैरी के वश में आने देगा और उन्हें नहीं छुड़ाएगा। वहां कुछ ऐसे भी लोग थे जो सच्चे मन से परमेश्वर को खोजते थे और जकरिया की चेतावनी को परमेश्वर का वचन स्वीकार करते थे। तो आइए हम देखते हैं जकरिया की पुस्तक 11 अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है, वह उसी दिन तोड़ी गई और इससे दीन भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थीं, उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। ध्यान दीजिए, दीन भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थीं, ये वे इसराइली थे जो परमेश्वर की आज्ञा मानते थे और परमेश्वर के वचन में विश्वास रखते थे। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे लिए मुख्य बात है परमेश्वर के वचन में विश्वास करना। यदि आप बाइबल को परमेश्वर का वचन नहीं मानते हैं तो आप मसीही जीवन में विकास नहीं कर पाएंगे, सच्चे परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़ने पर परमेश्वर आपको विश्वास में दृढ़ करेगा। आपको आरंभ में तो बाइबल की बातें समझने में कठिनाई होगी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, परंतु अब मैं बाइबल को परमेश्वर का वचन मानता ही नहीं, स्वीकार भी करता हूं। अपनी सेवा के आरंभिक 2-3 वर्ष मैंने बाइबल को परमेश्वर का वचन सिद्ध करने में लगाए, परंतु अंततः मैंने इस प्रयास को समय गंवाना ही समझा। मुझे स्वर्गीय डॉक्टर बॉब मूलर की बात बहुत अच्छी तरह से याद है और अच्छी लगी। उन्होंने मुझसे कहा, यदि आपके घर के पिछवाड़े में एक शेर पिंजरे में बंद है तो आप उसकी सुरक्षा में बिल्लियां भगाने के लिए चौकीदार नहीं रखेंगे। आपको तो बस पिंजरे का द्वार खोलना है और शेर स्वयं ही सब कुछ संभाल लेगा। जी हाँ, यह एक अति उत्तम उदाहरण है और मैंने अपनी सेवा में इसको अपनाया है। मैं परमेश्वर के वचन का द्वार खोल देता हूँ और वचन अपने आप को सिद्ध करता है। मुझे बिल्लियों की चिंता नहीं है, मैं केवल वचन को ज्यों का त्यों सुनाता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर जकरिया कहता है कि स्वदेश लौटे इसराइलियों में कुछ लोग दीन भेड़ बकरियां परमेश्वर के वचन में विश्वास रखते थे। आज जैसा कि हम में से कई लोग परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं परंतु विश्वास नहीं रखते, परंतु कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के वचन में विश्वास रखते हैं। यह हम देखते हैं कि अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु, उनमें से मसीहा का उदय होगा उन लोगों के बीच में से, और वे उसका इनकार करेंगे। बहुत ही कम लोग उसे ग्रहण करेंगे। किसे? मसीह को। उसका इनकार करने के कारण वह जाति दंड पाएगी और दंड के फल स्वरूप संपूर्ण संसार में तीतर बीतर होगी। अब आप ध्यान दें और अगला पद सुने। जकरिया 11 अध्याय उसका 12 पद लिखा है, तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। मेरे प्रियो, यह एक अद्भुत भविष्यवाणी है और इसकी पूर्ति भी बड़ी ही विचित्र थी। मती रचित सुसमाचार नया नियम से 26 अध्याय उसके 14 और 15 पद में लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। मेरे मित्रों, जकरिया ने भी इतनी ही राशि कही थी। मत्ती रचित सुसमाचार में एक और बड़ी रोचक बात है जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसके 9 और 10 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, तब जो वचन यर्मिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इसराइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। यर्मिया की पुस्तक 18 अध्याय उसके 1-4 पद में इसे पढ़ते हैं और जकरिया की पुस्तक 11 अध्याय उसके 12 और 13 पद में। और हम देखते हैं नए नियम में यर्मिया का नाम आता है क्योंकि यीशु के युग में यर्मिया भविष्यद्वक्ताओं में पहली पुस्तक थी और पहली पुस्तक के नाम ही से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें जानी जाती थी। आगे हम देखते हैं जकरिया की पुस्तक 11 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। ध्यान दीजिए, लिखा है भारी दाम अर्थात मनमाना मूल्य जो उन्होंने मेरा ठहराया है। चांदी के 30 सिक्के। यह राशि तो बहुत ही कम थी। यहूदा ने इन 30 सिक्कों से क्या किया? मैंने चांदी के 29 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। कुछ टीकाकारों का मानना है कि कुम्हार से अभिप्राय है मंदिर का खजाना। देखिए मत्तियरची सुसमाचार 27 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, प्रधान याचकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया, अर्थात खरीद लिया। जी हां, यह संयोगवश नहीं हुआ था, क्योंकि जकर्याह पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर चुका था। कुम्हार का खेत क्या था? वह स्थान जहां कुम्हार अपने बिगड़े हुए बर्तन फेंक देता था। यर्मिया की भविष्यवाणी में परमेश्वर अपनी तुलना कुम्हार से करता है। परमेश्वर मनुष्य को उसी प्रकार अपनी इच्छा का रूप देना चाहता है जिस प्रकार कुम्हार किसी पात्र को अपनी इच्छा के अनुसार रूप देता है। यदि मिट्टी कुम्हार के योग्य नहीं तो वह उसे फेंक देता है। मेरे मित्रों, यह एक रोचक बात है कि प्रभु यीशु की कीमत चांदी के 30 टुकड़े थे। याजक बहुत ही धर्मी जन थे, अतः उन्होंने हत्या के इस पैसे को मंदिर में उपयोग करना उचित नहीं समझा और गरीबों के दफन के लिए एक खेत खरीद लिया। प्रभु यीशु बहुत समय से कुम्हार के खेत में काम कर रहा है। उसने उस खेत की पूरी कीमत चुकाकर उसे खरीदा है, चांदी के 30 टुकड़ों में नहीं, अपने लहू से, जिसका मान सोने और चांदी से भी कई गुना अधिक है। उसने अपने लहू से मूल्य चुकाया कि इस मानव जाति को, जो शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आत्मिक रूप से भ्रष्ट है, खरीद ले। यह कुम्हार प्रभु यीशु मनुष्य को, जो परित्यक्त मिट्टी है, फिर से चाक पर रखकर सम्मान का पात्र बनाना चाहता है। वह परित्याग के इस युग में भी कुम्हार के खेत में काम करता है। जी हां, वह आज आपके बिगड़े जीवन को बनाना चाहता है, आपके जीवन को संवारना चाहता है, आपको वही रूप देना चाहता है जो परमेश्वर ने आपको आरंभ में दिया था। क्या आज उस रूप को आप पाना चाहते हैं? यदि हां, तो आपको यीशु के पास आना होगा। जकर्याह आगे कहता है 11 अध्याय उसके 14 पद में, तब मैंने अपनी दूसरी लाठी, जिसका नाम एकता था, इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इसराइल के बीच में है। यहां पर वह कहता है एकता की लाठी। एकता की लाठी तोड़ने का अर्थ है परमेश्वर और इसराइल के सब संबंधों का अंत। मानो कि परमेश्वर कह रहा है, जब तुमने मुझे अन्य जाति के हाथ पकड़वाया कि मुझे क्रूस दे, तब मैंने अपनी वाचा तोड़ दी। रोमित तीतुस अब आएगा और तुम्हें संपूर्ण संसार में तीतर वीतर कर देगा। उनका मसीह तो आया, परंतु उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया और परिणाम स्वरूप वे आज संपूर्ण विश्व में तीतर वीतर हैं। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं मूढ़ चरवाहा जो ख्रिस्त विरोधी है। जकर्याह के पुस्तक 11 अध्याय के 15 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तो मूढ़ चरवाहे के हथियार ले ले। कहता है मूढ़ चरवाहे के हथियार ले ले। मेरे विचार में यह जकर्याह का दूसरा अभिनय है। उसे फिर से चरवाहे की लाठियां उठानी है। जकर्याह 11 अध्याय उसके 16 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को न ढूंढेगा, न तीतर बीतर को इकट्ठी करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न जो भली चंगी हैं उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। मेरे मित्रों, जकरिया ने अच्छे चरवाहे का प्रदर्शन किया जो चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया था। उसे रोमी क्रूस की मृत्यु के लिए बैरियों को सौंप दिया गया था, परंतु वह क्रूस पीतल की वेदी बना जहां परमेश्वर का मेमना संसार के पाप उठा लेने के लिए बलि चढ़ाया गया था। वह एक अच्छा चरवाहा था जिसने अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। अब जकरिया कहता है मूढ़ चरवाहे की चर्चा, अर्थात जकरिया मूढ़ चरवाहे की चर्चा करता है और यह चरवाहा इतिहास का भावी नायक होगा। मसीह के आगमन में और ख्रिस्त विरोधी के आगमन में और इसके मध्य जो एक लंबा समय है, उससे जकरिया को कोई प्रयोजन नहीं है। वह स्वदेश लौटे इसराइलियों में भविष्यवाणी कर रहा था, इसमें कलीसिया का कोई भी संदर्भ नहीं है। यह मूढ़ चरवाहा तब आएगा जब प्रभु यीशु कलीसिया को पृथ्वी से उठा लेगा और परमेश्वर इसराइल पर फिर से ध्यान देगा। मेरे मित्रों, इसराइल के साथ ख्रिस्त विरोधी का व्यवहार आप देखिए कि वह कैसा होगा। वह खोई हुई को न ढूंढेगा, न तीतर वितर को इकट्ठी करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न तो भली चंगी हैं उन्हें पालन पोषण करेगा या उनका ध्यान रखेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। यह अच्छे चरवाहे की तुलना में कैसी विषमता है। अच्छा चरवाहा तो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 43 पद में प्रभु यीशु कहता है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। आज की परिस्थितियों को देखते हुए यदि कोई शांति व्यवस्था और समृद्धि लाए तो क्या संसार उसका हार्दिक स्वागत नहीं करेगा या पूछेगा कि वह नरक से आता है या स्वर्ग से। आज एक अच्छे नेता की हर जगह कमी है। हम ख्रिस्त विरोधी के आगमन के लिए तैयार हैं क्योंकि वह दिन आने वाला है जो भयानक होगा। जकरिया के पुस्तक 11 अध्याय उसके 17 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है, उसकी बाह और दाहिनी आंख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बाह सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। मेरे मित्रों, जकरिया उसे निकम्मा चरवाहा कहता है। वह एक धोखेबाज होगा, वह किसी लाभ का नहीं, परंतु संसार उसके पीछे भागेगा। प्रतिज्ञा के मसीह अच्छे चरवाहे को स्वीकार न करने पर इसराइल विश्व में तीतर वितर हुआ। प्रभु यीशु ने कहा था कि सुसमाचार यरूशलेम से निकलकर पृथ्वी की छोर तक जाएगा। आज ऐसा ही हो रहा है। रेडियो द्वारा यह संभव हो गया है। 2000 वर्षों से सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। ख्रिस्त विरोधी जब आएगा तब वह एक महान राजनीति का कर्ता होगा। वह सब प्रतिज्ञा को करेगा। लिखा है, हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है। इब्रानी भाषा में हाय एक चेतावनी शब्द है जो संकट का बोध करवाता है। आगे हम देखते हैं, लिखा है, उसकी बाह और दाहिनी आंख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बाह सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। इसका अर्थ क्या है? उसकी आंख भेड़ों को फाड़ खाने को घूरती हैं और उसकी भुजाएं भेड़ों की रक्षा नहीं करती, अतः परमेश्वर उसे दंड देगा। उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी और उसकी बाह सूख जाएगी। प्रकाशित वाक्य के अनुसार ख्रिस्त विरोधी शैतान से पहले नरक में डाला जाएगा। यही ख्रिस्त विरोधी महाक्लेश लाएगा। महाक्लेश के पहले आधे समय तो इसराइल धोखा खाकर उसे मसीह समझेगा, परंतु जब तक वे उसकी वास्तविकता को समझेंगे तब तक वह विश्वास घात कर चुका होगा और विश्व शासक बन जाएगा। उस समय संसार की सब सेनाएं यरूशलेम के विरुद्ध खड़ी होंगी और चढ़ आएंगी। मेरे प्रियो, यह समय बहुत ही भयानक होगा और आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात से आगाह करता है, हमें इस बात का हमें जानकारी देता है कि हम ध्यान दें कि परमेश्वर उन दिनों में अपने लोगों को किस प्रकार रखेगा। मेरे मित्रों, इससे पहले कि वो भयानक दिन आए, महाक्लेश आए, समय यही है कि आज आप प्रभु के पास आ जाएं और उसे अपने जीवन में जगह दें, ताकि आप उस वास्तविकता को अपने जीवन में ग्रहण करें कि वही मेरा मसीह है, मेरा उद्धार करता है। क्योंकि वचन में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। एक नाम प्रभु यीशु का नाम आपको उद्धार दे सकता है। यदि आप उसे इनकार करते हैं तो आपको बचाने वाला कोई नहीं। आज समय है कि अपने जीवन के लिए एक उचित निर्णय लें। आप समय दें, परमेश्वर की निकटता में आए, सत्यता को जाने। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप एक सही निर्णय के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
न रोको उन्हें न टोको उन्हें।